कहीं ना कहीं अरमान अब सबको बारी बारी से घूर कर देख रहा था, मानो कि वो सबको कहना चाह रहा हो कि क्या मैं पागल हूं या मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। लेकिन उस वक्त वो किसी को कुछ नहीं कह पाया, केवल खाली खाली नजरों से वो सबकी ओर देखता रहा। उसके बाद जल्दी ही ध्रुव ने अरमान को कुछ दिनों तक अपने दिमाग को शांत रखने की मेडिसिन ले लेने की सलाह दे दी थी, और अरमान ने वो ले भी ली थी, क्योंकि अरमान आस्था को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। वो सिर्फ और सिर्फ आस्था से प्यार करना चाहता था, 24 घंटे उसके आसपास रहना चाहता था, उसे डराना नहीं चाहता था, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता था। वेल, जल्दी ही सबकी बातें सुनने के बाद अरमान अब एक बार फिर से अपने रूम में धमका, और वहां जाकर उसने देखा कि आस्था अभी तक बेहोश थी। डॉक्टर ने उसका हाथ की ड्रेसिंग कर दी थी, कुछ इंजेक्शन वगैरह उसको दे दिए गए थे। साथ साथ डॉक्टर ने बता दिया था कि अभी उन्हें होश पूरी रात शायद ना आए, अगली सुबह ही उन्हें होश आ पाएगा। तब तक अपने जितना आराम करने दे उतना उनके लिए ठीक रहेगा, और हो सके तो उनके आसपास का माहौल एकदम नॉर्मल रखने की कोशिश करें, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेस संभाल नहीं पाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर अरमान ने केवल उसे एक सपाट लुक दिया, और डॉक्टर जल्दी ही वहां से चला गया था। उस वक्त सभी लेडीज प्रियंका को छोड़कर आस्था के पास ही जमा थीं। प्रियंका को आस्था से कोई लेना देना नहीं था, हालांकि उसे भी इस बात की खबर मिल चुकी थी कि आस्था बेहोश है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। लेकिन उसने सोचा कि वो बेकार में अपनी नींद क्यों खराब करे, जाकर आराम करे। आस्था बेहोश है या मरती है तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए प्रियंका उस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी, और उसने एक बार भी आस्था को आकर देखना जरूरी नहीं समझा था। वहीं दूसरी ओर नानी माँ, जो कि आस्था के सिरहाने बैठी हुई थी और उसके सर पर हाथ फेर रही थी, और उसकी आंखों में आंसू थे। रश्मि, राधिका भी पूरी तरह से उदास थी, उन सबकी आंखों में आंसू थे, और रौनक भी आस्था का हाथ पकड़े बैठी हुई थी। आस्था को इस हालत में देखकर उसे वाकई बहुत बुरा लग रहा था। कुछ ही दिनों में आस्था ने उन सबके दिल में एक अपना खास जगह बना ली थी, स्पेशली रौनक और रश्मि के दिल में। दोनों ही आस्था को अपनी बहनों के जैसा ट्रीट किया करते थे। लेकिन राधिका वहां आई थी, भले ही 2-3 दिन हुए थे, लेकिन राधिका भी आस्था को बेहद पसंद करने लगी थी। तभी अरमान के वहां जाने पर अब सब एक दूसरे को देखने लगी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहें। तभी नानी माँ उठती हैं और अरमान की ओर देखकर बोली, दामाद जी, मेरे बेटी का ध्यान रखिएगा। ऐसा बोलकर नानी माँ कमरे से बाहर निकल गई थी। नानी माँ के चेहरे पर आज अजीब से एक्सप्रेशन थे। आस्था की हालत नानी माँ से देखी नहीं जा रही थी। जिस तरह से अबीर सिंह राठौर, साथ साथ अरमान, दोनों ही आस्था को लेकर झगड़ रहे थे, अब नानी माँ को अजीब सा डर लगने लगा था। वो सोचने लगी, कहीं इन दोनों आशिकों के बीच में फंसकर आस्था को कुछ ना हो जाए, कि कहीं वो आस्था से हाथ ना धो बैठें। नानी माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थीं, लेकिन आस्था को खोने का रिस्क वो किसी भी कीमत पर नहीं ले सकती थीं। इसीलिए नानी माँ के दिमाग में अब कुछ अलग ही तरह की खिचड़ी पक रही थी। वहीं अब सुमित, आकाश, ध्रुव, आहान, वो भी सब उस वक्त आस्था को देखने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए थे। लेकिन दादाजी कुछ देर आस्था के पास रुकते हैं और उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बच्चा, बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद हम तुम्हें इतनी सी भी तकलीफ नहीं होने देंगे। कितनी बार आस्था को तकलीफों से दूर रखने की कोशिश की जाती थी, लेकिन हर बार घूम फिरकर तकलीफें आस्था को ही ढूंढ लेती थीं। वो जल्दी ही अब सब चले गए थे। सुमित ने एक उचकती सी नजर राधिका पर डाली थी, साथ ही साथ उसके हाथों में लगी मेहंदी को देखकर वो पूरी तरह से आग बबूला हो उठा था। वो सोचने लगा, घर में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन इस लड़की को मेहंदी की पड़ी हुई है। ये तो बस जल्द से शादी करना चाहती है ताकि ये उसे हासिल कर सकें, लेकिन इस लड़की के तो मैं प्लान पूरी तरह से बर्बाद करके रख दूंगा। कहीं ना कहीं सुमित राधिका को घूरता हुआ जल्दी ही अपने कमरे में चला गया था, और अरमान एकदम से टूटा हुआ आस्था के पास बैठा हुआ था और उसका हाथ पकड़कर पूरी रात उसे देखता रहा था। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर जल्दी ही अपने बड़े से मेंशन में था। जिस तरह से आज थक्के मारकर उसे सिंघानिया मेंशन से निकाला गया था, उसकी काफी बेइज्जती हुई थी, लेकिन अबीर सिंह राठौर के चेहरे पर इतना सा भी एहसास नहीं था। वहीं अजीत को अब अबीर सिंह राठौर को देखकर डर लग रहा था, क्योंकि अबीर की ओर अगर कोई घूर कर या आंख उठाकर भी देख लेता था तो अबीर ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। लेकिन यहां तो अबीर सिंह राठौर की बेइज्जती पे बेइज्जती हुई जा रही थी। इतना ही नहीं, उसकी जान तक लेने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अबीर सिंह राठौर पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो इस तरह का बर्ताव कर रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। तभी अजीत अबीर की ओर देखकर बोलता है, बॉस, अगर आपके पिताजी को इस बात के बारे में इन्फॉर्म कर दें, अमरेंद्र जी यहां आ जाएंगे। तब अबीर घूर कर अजीत को देखते हुए कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, एक बार में उनकी बहू को घर ले आऊं और उनकी मनपसंद जमीन उनको गिफ्ट के तौर पर दूं, उसके बाद में पिताजी को यहां लेकर आऊंगा। अब जैसे ही अबीर ने ये कहा, अजीत अबीर को ऐसे देख रहा था मानो किसी बेवकूफ को देख रहा हो, क्योंकि अबीर वो दो चीज छीनने की बात कर रहा था जिनके बारे में सोचने पर ही अरमान सिंघानिया दुनिया उलट पुलट कर सकता था। अब अजीत को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके बॉस के दिलो दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है। वहीं अबीर इस वक्त अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाकर बोला, फिलहाल तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी बेइज्जती दिखाई दे रही है, तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा था। अरमान सिंघानिया का चेहरा देखा था तुमने, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसकी दुनिया उलट पुलट गई हो। ये बात मैं अब समझ चुका हूँ कि आस्था अरमान सिंघानिया की जिंदगी बन चुकी है, मेरी बटरफ्लाई। लेकिन मैं अपनी बटरफ्लाई को अरमान सिंघानिया के साथ रहने नहीं दूंगा, उसे आना तो मेरी जिंदगी में ही पड़ेगा, वो भी हर हाल में। और देखो अब अबीर सिंह राठौर किस तरह से अरमान सिंघानिया को अपनी बटरफ्लाई से अलग करता है और उसे अपनी जिंदगी में लेकर आता है। ये बोलकर अबीर अपने कमरे में चला गया था। वहीं अजीत अब कंफ्यूजन से अबीर को जाते हुए देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिरकार उसका बॉस करना क्या चाह रहा था और बोलना क्या चाह रहा था। फिलहाल उसने अपना सर झटक दिया और सामने पड़े हुए भुने हुए चिकन पर कॉन्सेंट्रेट करने लगा था। वहीं दूसरी ओर पूरी रात अरमान सिंघानिया ने एक और रात जाग कर गुजार दी थी और आस्था को पूरी रात देखता रहा। बीच बीच में एक दो बार आस्था हल्का सा नींद में कसम साई थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुली। उसकी आंखें अगली सुबह ही खुली थी, और जैसे ही अगली सुबह आस्था की आंखें खुली, उसे अपना शरीर काफी ज्यादा कमजोर सा महसूस हो रहा था। एक तो काफी स्ट्रेस और ब्लड भी लॉस हो गया था, अरमान की सनक के चक्कर में कितना ही सारा उसे नुकसान हुआ था। और तभी आस्था ने उठकर अपने सर पर हाथ रखकर हल्का से अपने बालों में उंगलियों को फहराया, क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। उसका सर इस वक्त बेहद भारी हुआ पड़ा था। तभी उसकी नजर ठीक राइट साइड में बैठे हुए अरमान सिंघानिया पर गई, जिसने अपने हाथों को अपने गालों पर रख रखा था और एकटक आस्था को देखे जा रहा था। आस्था एक बार फिर अरमान को सामने देखकर घबरा गई थी, क्योंकि अरमान की आंखें ना सोने की वजह से एकदम लाल सुर्ख हो गई थी।
एकदम ब्लड शॉट उसकी आंखों में जमा हो गया था। इतना ही नहीं, उसकी आंखों की जो डोरियां थी वो एकदम मोटी मोटी हो गई थी। अरमान बेहद डरावना दिखाई दे रहा था, हालांकि वो स्मार्टनेस, हैंडसम, वो बेहद हॉट और हैंडसम और गुड लुकिंग था, लेकिन इस वक्त उसका जो हाल था उसे देखकर तो अच्छा अच्छा अपनी पैंट गीली कर दे। जब आस्था जल्दी ही अपने थूक को निगलते हुए अरमान की ओर देखकर पूछती है, अरमान जी आप यहाँ और आप ऐसे क्यों बैठे हैं, क्या पूरी रात नहीं सोए? अरमान की आंखों को देखकर पता चल रहा था कि वो पूरी रात नहीं सोया, सिर्फ और सिर्फ एक टक आस्था को निहारे रहा था। अब आस्था की आवाज़ कांप रही थी और थोड़ी लड़खड़ा रही थी, तो ये बात अरमान को कुछ खास पसंद नहीं आई, और वो थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल रखकर जवाब देता है, क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा घबरा क्यों रही हैं? हाँ, आप मेरी बीवी हैं आफत, और आप मुझे बेझिझक सब कुछ बोल सकती हैं। आपको मुझसे बोलने में किसी तरह की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, सो आप मुझसे बिल्कुल खुलकर बोलिए। फिर से दोहराएं, चलिए आप फिर से मुझे यही क्वेश्चन रिपीट कीजिए, और हाँ, इस बार आपकी बातों में कपकपाहट या घबराहट नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था केवल घूर कर अरमान को देख गई थी। उसे समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या, लेकिन अरमान ने भले ही सॉफ्ट वॉइस में ये बात बोली थी कि जो बातें आस्था ने कांपते हुए बोली हैं वो फिर से नॉर्मल वॉइस में कहें, लेकिन अरमान का यूं लगातार उसे देखना आस्था को भला नॉर्मल कैसे रख सकता था। आस्था ने फिर खुद से हिम्मत जुटाई और इस बार थोड़ी सी बिना हकलाहट के, बिना झुंझलाहट के और बिना कांपते हुए उसने बोलने की कोशिश की थी, आप यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जैसे ही आस्था ने थोड़े से नॉर्मल वॉइस में ये पूछा, अब अरमान के चेहरे पर एक शानदार मुस्कुराहट थी, और अगले पल उसने आस्था को गले से लगा लिया था और उसे किस करते हुए बोला, मैं जानता था तुम मुझसे नहीं डरती हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, देखो कितने प्यार से पूछा तुमने मुझे। हाँ, मैं पूरी रात यहीं बैठा था क्योंकि मैं अपनी खूबसूरत सी बीवी, आफत बीवी को देख रहा था, लेकिन अब तुम्हारा इतना नॉर्मल तरीके से मुझसे बात करना मुझे बहुत पसंद आया, रियली बेबी। ऐसा बोलकर अरमान ने आस्था के गालों पर एक लाइट किस कर दिया, और आस्था केवल हल्का सा मुंह खोले हुए अरमान को देखती रही। तभी अरमान उठता है, उठकर उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया, क्योंकि पूरी रात एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से उसके हाथ पांव काफी ज्यादा जकड़ गए थे। अरमान की एक एक हड्डी की आवाज आस्था के कानों में सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि अरमान की एक एक हड्डियां इस वक्त एक बड़ा ही प्यारा सा संगीत गुनगुना रही हों। आस्था को उस वक्त अरमान को देखना बेहद पसंद आ रहा था। अरमान भले ही पूरी रात नहीं सोया था, लेकिन उसका चेहरा उस वक्त खतरनाक के साथ साथ बेहद हॉट और गुड लुकिंग दिखाई दे रहा था। आस्था कितनी ही देर तक अरमान के हैंडसम से चेहरे में खो गई थी। वहीं अरमान जो कि खड़ा होकर अपना हाथ आगे पीछे ले जाकर अपने शरीर की हड्डियां लचका रहा था, जब उसकी नज़र आस्था पर पड़ी, क्योंकि आस्था ब्लश करते हुए उस वक्त अरमान को ही देख रही थी। अरमान ने ऊपर कुछ नहीं पहना था, केवल लोअर में वहां था, आस्था अरमान के चॉकलेट बाइसेप्स को देख रही थी, चॉकलेट कट के बाइसेप्स को देख रही थी। अरमान का तो पेट हुआ ही नहीं करता था। आस्था सोचती थी कितना पत्थर जैसा शरीर है, लेकिन दिख कितना कमाल का रहा है। अब आस्था को यूं अपनी तरफ देखता हुआ देखकर अरमान मुस्कुराया और उसे छेड़ते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, अगर तुम्हारा कुछ करने का मूड हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं हाजिर हूँ। अब जैसे ही अरमान ने अचानक से ये कहा, आस्था झेप गई थी और कुछ शर्म के मारे उसका मुंह लाल हो गया था, क्योंकि वो वाकई अरमान को बड़ी ही देर से निहारे जा रही थी। अरमान का हैंडसम सा चेहरा, उसके बिखरे बिखरे से चेहरे पर बाल, मोटी मोटी आंखें जो कि अब थोड़ा सूजने की वजह से भी मोटी हो गई थी, और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। अरमान उलझा हुआ सा, बेपरवाह सा, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। आस्था का दिल किया कि वो भी इसी वक्त अरमान को जोरों से गले से लगा ले, लेकिन तभी उसे अरमान का बिहेवियर याद आने लगा था कि अरमान ने उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया था। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले भी तो वो एक ही बार लगातार बोले जा रहा था, एक ही बात पूछे जा रहा था। आस्था अब काफी ज्यादा कश्मकश का शिकार हो गई थी। तभी अरमान आस्था के पास आगे आया और अपने हाथ की चुटकी बजाते हुए बोलता है, तुम इस वक्त किसके बारे में सोच रही हो, और जब मैं तुम्हारे आसपास रहूं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा ही तसव्वुर करना चाहिए वाइफी। ऐसा बोलकर अरमान ने एक बार फिर उसके माथे को चूम लिया था। आस्था को इस वक्त अरमान का प्यार करना बेहद पसंद आ रहा था, साथ साथ वो मुस्कुराई भी जा रही थी। अरमान भले ही कितना ही नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आस्था जो कि अब नॉर्मल होने का दिखावा कर रही थी, अंदर ही अंदर पूरी तरह से कांप रही थी। हेलो दोस्तों, आप लोगों से एक राय लेनी थी। बेसिकली आप लोगों के मनोरंजन के लिए ही ये कहानी बनाई गई है, तो आप लोगों की राय बेहद इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप सब प्लीज जरूर बताइए वसुंधरा को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग, और क्या वसुंधरा जैसी मतलबी औरत की अरमान की जिंदगी में एंट्री होनी चाहिए या नहीं।